हरे कृष्ण रसामृत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस
यस, इज माय वॉइस क्लियर प्रभु?
प्रभु जी, इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर, लाउड एंड क्लियर।
हरे कृष्णा। ओके, ओम अनंत श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरौ श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू दिस संडे मॉर्निंग क्लास एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव कम हियर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट कृष्णा। हमें नहीं पता ये क्लास हिंदी में बोलनी है या इंग्लिश में बोलनी है, सो वट एवर यू ऑल से, आप सब रसामृत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, इट पॉसिबल इन बोथ विदाउट रिपीटेशन।
सॉरी आई कुडंट हियर।
हरे कृष्णा।
यस प्रभु।
या मिक्सड हिंदी एंड इंग्लिश, नो नीड टू रिपीट द व्हाट एवर यू टोल्ड अगेन in
English and Hindi has to be mixed.
Yeah, okay,
if everyone understands Hindi I can speak Hindi, it'll be better for me to speak one language.
Okay, then go ahead with Hindi Prabhuji.
Okay Prabhuji, Hindi.
Okay, Hare Krishna. So Hindi mein hi bolenge. एक भाषा अच्छी रहती है, दो भाषा मिक्स करने में फिर वो पता नहीं चलता कौन सी भाषा में ज्यादा बोल दिया किस में कम बोल दिया। तो रविवार के इस क्लास में आप सबका स्वागत है और आज की ये जो विशेष क्लास है आप सबके लिए भी अच्छा है कि अब से रविवार आपकी छुट्टी होती है शुक्रवार की जगह, रविवार को हम और भी जगहों से आप सुन सकते हैं। और बहुत आभारी हैं आप सभी भक्तों के अवतारी देश के कि आप लोग वहां बैठकर भी भक्ति कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भारत में रहकर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं जितनी भक्ति आप लोग वहां अवतारी देश में बैठकर कर रहे हैं, और वैसे भी वो अवतारी देश है, कृष्ण का देश, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान जाहर, उनका ही रूप वहां पर है भगवान कृष्ण का। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप सब भक्ति कर रहे हैं जहां परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, विरोधी परिस्थितियां हैं, कोई ऐसा ज्यादा सहयोग बाहर से नहीं है, लेकिन कभी कभी विरोध होने से बहुत ज्यादा तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि आप सब वहां पर हैं और आपका विरोध हो, विरोध मतलब विरोध तो नहीं हो रहा है लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति की, और फिर भी आप लोग भक्ति कर रहे हैं वहां रहकर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रयास करेंगे अगली बार जब उस तरफ आएंगे तो निश्चित आप सबके दर्शन करने आएंगे, ताकि आपके भक्ति को देख सकें बहुत अच्छी तरह, किस तरह भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम जब पिछली बार बहरीन गए थे तो बहरीन में रथ यात्रा देखकर बड़ा अच्छा लगा था। अनुमति नहीं है बाहर करना, छोटे से हॉल में रथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इतना उत्साह था कि बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। तो इसी तरह आप सब भी भक्ति कर रहे हैं ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो आप सबके बड़े आभारी हैं, हमारा प्रणाम आप सबको कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप भक्ति कर रहे हैं। और आज हमने सोचा कि आप सबको एक कहानी सुनाए। कहानियां अच्छी लगती हैं, तो एक कहानी सुनाते हैं आप सबको। ये कहानी है श्रीमद् भागवत से, इसीलिए वो कहानी नहीं लीला हो जाती है। और ये आठवें स्कंद में एक ही अध्याय में ये कथा है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली कथा है। ये ऐसी कथा है जो भगवान के प्रेम को दर्शाती है। ये ऐसी कथा है जो भगवान को भक्त पर आश्रित होना बतलाती है, कि भगवान भी भक्त पर आश्रित हो जाते हैं, जो कि बहुत विचित्र है। भक्त भगवान पर आश्रित है ये माना जाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन भगवान भक्त पर आश्रित, इस कथा से पता चलता है। साथ ही साथ ये कथा भगवान पर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत हमारे लिए लाभदायक है, और विशेष करके उन सभी लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति तीव्रता से नहीं कर पा रहे हैं, करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीजें उनको रोक रही हैं, ये कथा उनको भी बहुत लाभ देती है। वैसे तो भगवान की कोई भी लीला क्यों ना हो, हर लीला भगवान की बहुत लाभदायक है, लेकिन फिर भी सभी लीलाओं को एक साथ सुनना संभव नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया। आप सब जानते हैं भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच मूल संवाद है। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि भगवान बहुत निम्न रूप ले लेते हैं, बड़ा नीच श्रेणी का रूप ले लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनको क्या जरूरत है एक मछली का रूप ले लेने की? परीक्षित महाराज ने कहा, हमने सुना है कि भगवान मछली के रूप में आए, वो मछली तो बहुत पानी में हमेशा डरी हुई रहती है और उसका इतना कोई अच्छा रूप नहीं है, तो भगवान ऐसे क्यों ले लेते हैं इस रूप को, क्या कारण है? तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात कही। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान निश्चित अलग अलग रूप लेते हैं, तो ये मूल प्रश्न था कि मछली का रूप क्यों लिया उन्होंने, और उसका कारण क्या था? उसका कारण था प्रेम। भगवान अलग अलग रूप प्रेम वश लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई बाध्य करता है, हमें मछली बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है हमारे कर्मों के अनुसार, भगवान को नहीं होना पड़ता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेम है भक्तों का, और भक्तों से इतना प्रेम भगवान करते हैं जिसके चलते वो ये नहीं सोचते कि मैं ये कौन सा रूप ले रहा हूं, ये बहुत निम्न रूप है, मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे आजकल लोग दुनिया में व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, नीचे की नहीं कोई जॉब नहीं करना, किसान नहीं बनना, वो तो बहुत बेकार चीज है लोगों के लिए। खाते वही हैं जो किसान उगाते हैं, लेकिन खेती करना नहीं चाहते। तो भगवान भी ये सोच सकते कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मैं सबका स्वामी हूं, ये नीचे की चीजें मेरे लिए नहीं है, भगवान ऐसा नहीं सोचते, उन्हें प्रेम है, इसलिए कोई भी रूप ले लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इस जगत में आते हैं, सबसे पहला कारण वो रक्षा करने आते हैं, किसकी? गायों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, भक्तों की, धार्मिक सिद्धांतों की, वैदिक साहित्य की, और जीवन के जो सिद्धांत हैं जिन पर जीवन चलना चाहिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज कि भगवान क्यों आते हैं, गायों की रक्षा, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गायों की रक्षा करने आते हैं, बहुत प्रिय हैं गाय भगवान को, इसलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं क्योंकि ब्राह्मण वैदिक संस्कृति को बनाए रखते हैं, गाय बहुत प्रिय है क्योंकि गाय वैदिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है उसको प्रदान करती है, और वैसे भी गाय सदैव सत्व गुण में रहती है। गाय के शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है, एक भी वस्तु उसके शरीर की ऐसी नहीं है जो व्यर्थ हो। तो गाय बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, हाँ भगवान को देवता बहुत प्रिय हैं, देवताओं की रक्षा करने आते हैं, और साथ साथ भक्त बहुत प्रिय हैं भगवान को, तो इन लोगों की रक्षा करने आते हैं, और धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करने, क्योंकि बहुत जरूरी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि क्या है? धर्म की ग्लानि है जब व्यक्ति भूल जाता है अपने स्थिति को, जब व्यक्ति भूल जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इस बात को जब वो भूल जाता है तो धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म की ग्लानि क्या है? धर्म की ग्लानि है जहां व्यक्ति भगवान को भूलता है, अपनी स्थिति को भूलता है, जहां व्यक्ति भक्ति से ज्यादा भोग को महत्व देता है, जहां उसके लिए भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कुछ आनंद, कुछ सुविधाओं की प्राप्ति हो जाए, उसे धर्म की ग्लानि कहते हैं। धर्म की ग्लानि उसे कहते हैं जब व्यक्ति भूल जाए कि मेरा धर्म है सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, जब इसको भूल जाते हैं तो धर्म की ग्लानि होती है। धर्म की ग्लानि होती है जब व्यक्ति भगवान की शरण ना जाकर, कृष्ण की शरण ना जाकर कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों की शरण लेता है, इसलिए ताकि उसका जीवन बड़ी अच्छी तरह से चल सके, इंद्रिय तृप्ति हो सके, ये धर्म की ग्लानि है। तो इसलिए भगवान धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करने आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। वैदिक साहित्य की रक्षा करने आते हैं भगवान, क्यों? क्योंकि सारा धर्म वैदिक साहित्य में दिया है, और वैदिक साहित्य का सार क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का सार है मुझे जानना। तो कृष्ण ये वेदों के सार है, सर्व वेदेषु, जितने भी वेद हैं उन सब में कृष्ण को ढूंढना चाहिए। तो भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। तो वेदों की रक्षा करने का अर्थ क्या है? जब लोग ये भूल जाते हैं कि वैदिक साहित्य का सार कृष्ण है, और वेद को अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुछ इस जगत का आनंद पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब भगवान उनकी रक्षा करने आते हैं, तब वेदों को रक्षा चाहिए। वेदों का उपयोग केवल कृष्ण को ढूंढने के लिए होना चाहिए, केवल कृष्ण की शरण जाने के लिए होना चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये वेदों का उद्देश्य है। लेकिन जब व्यक्ति वो भूल जाता है और वेदों का गलत इस्तेमाल करता है, अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण स्थापित करने के लिए, अपने आप को गलत कार्यों में लगाने के लिए, वेदों के अनुसार जीव हत्या करने के लिए, तो फिर वेदों की रक्षा की आवश्यकता होती है। भगवान उसके लिए आते हैं, और फिर जीवन के सिद्धांतों की रक्षा करने आते हैं भगवान। जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? अगर हम लोग जीवन के मूल सिद्धांत को ढूंढने का प्रयास करें तो हमें क्या मिलता है? जीवन के मूल सिद्धांतों में हमें मिलता है, मान लीजिए कोई कहता है कि अच्छी तरह से कर्तव्यों को निभाना, अच्छी तरह से जीवन जीना इत्यादि, लेकिन जीवन का मूल सिद्धांत है प्रेम। और इसीलिए इस जगत में हर व्यक्ति प्रेम ढूंढता है, कभी धन में प्रेम ढूंढता है, कभी स्त्री में प्रेम ढूंढता है, कभी मान सम्मान में प्रेम ढूंढता है। प्रेम तो ढूंढेगा ही, वो रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल सिद्धांत है प्रेम। मगर किससे करना वो जरूर जानना चाहिए। प्रेम है लेकिन कृष्ण प्रेम। तो जब हम भगवान से प्रेम करना भूल जाते हैं तो स्वाभाविक है अन्य लोगों से, अन्य चीजों से, अन्य वस्तुओं से, अन्य स्थितियों से हमारा प्रेम हो जाता है। कभी व्यक्ति स्थिति से आसक्त होता है, तो कभी व्यक्ति से आसक्त होता है, कभी धन से, कभी संपत्ति से, कभी सुविधा से। आवश्यक है कृष्ण से आसक्त होना। तो जब ये सिद्धांत जीवन में भूल जाते हैं व्यक्ति, भगवान उसको स्थापित करने आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान आते हैं, लेकिन एक बात जान लो परीक्षित, कि हर अवस्था में वो दिव्य रहते हैं। और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं हवा का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हवा बहती है, अलग अलग स्थानों से होकर जाती रहती है हवा। कभी मल के ऊपर से जाती है, कभी सुगंधित पुष्पों के ऊपर से जाती है, कभी कूड़े करकट के ऊपर से जाती है। हवा ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग स्थितियों में से जा रही है, और हवा भी दूषित हो गई। हवा को कुछ नहीं होता। हवा अगर बदबू को भी लेकर जा रही है तो छोड़ देती है आगे जाकर, सुगंध को लेकर जा रही है छोड़ देती है आगे जाकर, हवा को कुछ नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान भी इसी तरह है। वो अगर कोई भी रूप लेकर क्यों ना आ जाए, मत्स्य बने, कूर्म बने, वराह बने, उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। वो हमेशा दिव्य बने रहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। हमें भगवान के हर एक अवतार को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, कूर्म हो, वराह हो, नरसिंह हो या राम हो। तो अवतारों को हमें समान रूप से देखना चाहिए। तो इस बात को बताकर अब वो मत्स्य अवतार की कथा कहते हैं। बहुत सुंदर कथा मत्स्य अवतार की वो कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, दरअसल दो मत्स्य अवतार हुए थे। सुखदेव गोस्वामी ने बोलने के समय दोनों को जोड़ दिया, इसलिए पहले बात की ब्रह्मा जी की रात्रि की, और फिर बात की चाक्षुष मनु की, जो छठे मनु होते हैं। तो दो अवतार हुए मत्स्य, एक ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में और दूसरे छठे मनवंतर में। तो इन दोनों की कथा अलग अलग है। तो पहली कथा उन्होंने बताई कि जब ब्रह्मा जी सोने गए, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, वो भी जीव हैं, शरीर लेते हैं, तो उनको भी नींद आती है। लेकिन ब्रह्मा जी का सोना बहुत लंबा होता है, क्योंकि उनका दिन भी बहुत लंबा है। तो जब ब्रह्मा जी सोने जा रहे थे तो उनको थोड़ी नींद आई, तो उनको उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे, और हयग्रीव नाम के एक असुर ने वेदों को चुरा लिया। और फिर उस समय, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही थी, पूरा प्रलय था, जल मग्न थे, तो भगवान को जल में मत्स्य अवतार लेना पड़ा, जिससे वो वेदों की रक्षा कर सके। ये पहला अवतार भगवान का हुआ था मत्स्य अवतार, और दूसरा फिर जो राजा सत्यव्रत के सामने। तो उन्होंने कहा कि ये अवतार हुआ और वेदों की रक्षा की गई। यहां हम देखते हैं कि हयग्रीव नाम का जो असुर है, वैसे हयग्रीव एक भगवान के अवतार का भी नाम है और हयग्रीव एक असुर का भी नाम है। तो हयग्रीव ये क्या कर रहा है? ये वेदों को चुरा रहा। क्यों? वेदों को चुरा कर क्या मिलेगा? कोई बेचेगा जाकर? अगर हम लोग कुछ वेदों को चुरा लेते हैं तो वो तो लिखित रूप में नहीं है, वो क्या करेगा? असुर क्यों वेदों को चुराते हैं? मान लीजिए कि कोई असुर सोना चुरा रहा है तो मान सकते हैं भाई उसको कुछ भोग चाहिए, कुछ और चुरा, वेद चुरा कर क्या करेगा? ये बड़ी विचित्र बात है कि वेद चुरा लिए उसने। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है वेदों का चुराया जाना. क्या अर्थ है वेदों का चुराए जाने का? अर्थ है हयग्रीव जैसे असुर नहीं चाहते कि लोग भगवान के निकट जाएं. हयग्रीव जैसे असुर ये नहीं चाहते कि एक ऐसा वातावरण वैदिक सभ्यता के अनुसार बने जिसमें केंद्र कृष्ण हो. हयग्रीव जैसे असुर ये नहीं चाहते कि वेद जो भगवान के दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं उनको सुनकर लोग मुक्त हों. क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनकी चेतना सदैव कृष्ण से दूर है और वो चाहते हैं कि हम सबकी चेतना भी दूर रहे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति है वैसा ही चाहेगा और इसी कारण से वेदों को चुराते हैं. तो आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण ये है. हमारे मन में तो प्रश्न आ रहा था, अरे वेदों को क्यों चुराया? सोना चुराता, कुछ और चुराता, किसी का महल चुरा लेता, किसी की गाड़ी चुरा लेता. नहीं, उसने वेद चुराए. अर्थ क्या है कि वो नहीं चाहते असुर कि कोई भगवान के निकट जाए. और जो भक्त होते हैं वो विरोध इसलिए करते हैं कि हमें भगवान के निकट जाना है, हमको प्रेम करना है भगवान से. तो इसलिए अपनी चेतना को सदैव भगवान में रखना चाहिए, हर तरफ भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए. यहां ये जो वेद चुराने का अर्थ है ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है. हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए किसी को भी कि कोई वेद चुरा ले. कैसे नहीं देनी चाहिए अनुमति? क्या हम रोक सकते हैं लोगों को वेद चुराने से? निश्चित रोका जा सकता है. ये जो जगत है ये हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मनोभाव है, उसका ही एक प्रतिबिंब है. मतलब एक शीशा रखते हैं सामने, दर्पण. तो दर्पण रख के क्या होता है, व्यक्ति दर्पण में अपनी ही प्रतिबिंब को देखता है. तो ये जो जगत है ये भी दर्पण की तरह है. क्यों दर्पण की तरह है? वो क्या दिखा रहा है हमें? जो हमारे मनोभाव है, जो हमारी मनोवृत्ति है, उसी को दिखा रहा है और कुछ नहीं. ये जगत है, ये तो एक दर्पण है. वैसे भक्ति भी एक दर्पण है. थोड़े समय बाद उसको चर्चा करेंगे. तो ये जगत एक दर्पण है, हमारी मनोवृत्ति हमारे मनोभाव को प्रदर्शित करता है. जैसे आप एक गुलाब का फूल देखते हैं तो गुलाब के फूल में क्या देखते हैं? फूल भी है, कांटे भी हैं. हम क्या देखें? हमारी मनोवृत्ति क्या है? हम बहुत सुंदर गुलाब का फूल देख रहे हैं या हम उसमें लगे हुए कांटों को देख रहे हैं? और इसीलिए जगत ऐसा दर्पण है कि अगर आप कांटों को देखोगे तो आपको फिर कांटे ही दिखाई देंगे, आपके जीवन में वही चीजें ज्यादा हों. लेकिन अगर आप फूल देख रहे हो तो आपके जीवन में कोमलता आए. हमारा जो ये कैसे है चेतना, किस तरह की हम चेतना रखते हैं? तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सर्वत्र कृष्ण को देखते हैं. कैसे देख सकते हैं सर्वत्र कृष्ण को? हमें सड़क पर चलते हैं तो हमें प्राणी दिखाई देते हैं, हमें बिल्डिंग दिखाई देती है, हमें पेड़ दिखाई देते हैं, हमें लोग दिखाई देते हैं, हमें गाड़ियां दिखाई देती हैं. कहां कृष्ण दिखाई देते हैं? लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हें हमेशा कृष्ण दिखते हैं. प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण हमेशा मेरे साथ है. कैसे दिख सकते हैं? चेतना. क्योंकि उनकी चेतना का दर्पण है सामने, वो मन में केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो जगत में भी कृष्ण दिखेंगे. लेकिन जब हम मन में वो स्मरण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं है हमारे मन में, हमारे मन में जिन चीजों का स्मरण है वैसा ही जगत हमें दिखाई देता है. तो असुर जो होते हैं वो चाहते नहीं है कि हम कृष्ण के पास जाएं. इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने मन अपनी चेतना में एक सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर, मनोवृत्ति हमारी कृष्ण के प्रति हो. इस जगत में दो प्रकार की मनोवृत्ति होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक. लेकिन हमारी मनोवृत्ति कृष्णात्मक होनी चाहिए, न नेगेटिव न पॉजिटिव. हमें कुछ लेना देना नहीं इस जगत के नेगेटिव पॉजिटिव से, क्योंकि सब जब कृष्णात्मक होगी, जब कृष्ण में होगी तो उसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, केवल पॉजिटिविटी। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां ना ही माया रा अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। तो जीवन से नकारात्मक विचारों को निकालना है, कृष्ण को लाइए जीवन, और कृष्ण को हटा देना ये आसुरी प्रवृत्ति। तो है गरीब ने चुरा लिए, और फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर उनको पुनः स्थापित किया। और फिर छठे मनमंत्र में, चाक्षुष मनमंत्र में, मनमंत्र के अंत में ये और एक बार मत्स्य अवतार हुए, जहां राजा सत्यव्रत को उन्हें बचाना था। तो बहुत सुंदर कथा है कि राजा सत्यव्रत हैं और वो एक समय तपस्या कर रहे थे और नदी में स्नान कर रहे थे, कृतमाला स्थान पर नदी में स्नान कर रहे थे। तो उस समय जैसे ही उन्होंने जल लिया हाथ में, तो इतना सा ऐसे जल लिया था तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को देखा, तुरंत फेंक दिया पानी में, मैंने गलती कर दी है, कहीं मर नहीं जाए, तो वापस फेंक दिया। फिर दूसरी बार जल लिया, फिर से वही मछली आ गई, फिर से फेंक दिया, फिर लिया, फिर आ गई। अब फेंकने जा रहे थे, मछली बोलने लग गई। आप सोचिए, कभी आप लोग स्नान कर रहे हैं, हाथ में मछली आ रही, बात करने लग जाए, आप क्या करोगे? भूत भूत चिल्लाकर भाग जाओगे ना कि क्या हो गया, क्या हो गया। राजा ने देखा तो मछली कहने लगी, अरे राजा, मैं भी आपकी प्रजा हूं, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं यहां पर इतनी, वो सब खा जाएंगी मुझे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मत्स्य पुराण कहता है, मत्स्य पुराण में भगवान की लीला का बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो उसमें लिखा है कि भगवान की शक्तियां असीम हैं, सर्वशक्तिमान है वो, लेकिन क्रीडार्थम, क्रीडार्थम मतलब एक लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए छोटी सी मछली बन गए हैं और अपने ही भक्त से रक्षा की भीख मांग रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये भगवान का प्रेम है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब भक्त उसकी रक्षा करते हैं, भगवान की उनकी रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है भगवान को। जब यशोदा मैया वो भगवान को लेकर वो गाय की पूंछ सब लगाती है उनके शरीर में, अरे अरे ये क्या हो गया इसको, ये कौन असुर आ गया था, इसको ठीक कर दे, तो गाय की पूंछ लेती हैं, उनके सर पर लगाती हैं, उनके शरीर के अंगों में लगाती हैं, अलग अलग स्थानों पर गोबर लगाती हैं यशोदा मैया, किस लिए? रक्षा करनी है मुझे कृष्ण की। बहुत आनंद आता है कृष्ण को। कृष्ण ये नहीं सोचते कि किसकी रक्षा की बात कर रहे हो आप, अरे आप तक को रक्षा मैं प्रदान करता हूं, कृष्ण बिल्कुल नहीं सोचते। उनके भक्त जब रक्षा करते बड़ा आनंद आता है, कृष्ण को बचा रहे हैं, अरे इसे कुछ हो नहीं जाए। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठा रखा था तो यशोदा मैया जाकर वो उनके ऐसे मसाज कर रही थी, अरे बहुत देर से उठा के रखा है, कहीं कहीं वो दर्द ना हो जाए हाथ में। जो ग्वाल बाल है वो अपनी अपनी छड़ी लगा रहे थे, कृष्ण चिंता मत करो, तुम्हें तो थोड़ी देर आराम करना है, तुम कर लो, हम पकड़ कर खड़े हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा, तो कृष्ण ने थोड़ा सा झुका दिया, सब गिर पड़े, उनकी लाठियां जो लगाई थी सब गिर पड़ी। तो लेकिन भाव है कि कृष्ण की हमें रक्षा करनी, बलराम जी हमेशा कृष्ण की रक्षा, अरे कृष्ण वहां नहीं जाना, कहां जा रहे हो, चलो इधर आओ, वहां अकेले नहीं जाना, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, और जब भी अकेला छोड़ा कृष्ण ने कुछ गड़बड़ कर दी। एक दिन अकेला छोड़ा तो कालिया के ऊपर चढ़ गए कृष्ण, अगर बलराम जी होते तो कभी नहीं जाने देते, लेकिन उस दिन जन्मदिन था, बलराम जी का घर पर रख लिया था, उनको बिठा दिया, तो भगवान चले गए और कालिया से युद्ध कर लिया उन्होंने। कृष्ण होते कभी, बलराम होते तो कभी नहीं जाने देते। बलराम कहते ये मैं जानता हूं, ये सर पे है ना मेरी, मेरे परिवार का, मैं कर लूंगा इसकी, आप चिंता मत करो। दरअसल जब बलराम जी ने कृष्ण को कालिया के ऊपर नृत्य करते देखा था तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया था, उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो कभी नृत्य नहीं किया, अनंत शेष इतने समय से मैं इनकी जो शैया बना हुआ हूं, मेरे ऊपर तो कभी नृत्य नहीं करते, ये देखो इसको कालिया के ऊपर अपने चरण उन्होंने डाल दिया। तो बलराम जी कभी, तो ये भाव है भक्त का कि भगवान की वो रक्षा करना चाहते हैं और भगवान को बहुत आनंद आता है, तो इसीलिए भगवान अभी प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ब्रज में गोपियां जब कान पकड़ लेती थी उनको माखन चोरी करते समय, तो कृष्ण छोड़ दो छोड़ दो, अब बस इस बार छोड़ दो, अगली बार बिल्कुल नहीं करूंगा, ये प्रण लेता, पहली बार चुराया, कभी आया नहीं था तुम्हारे यहां, तो भगवान को आनंद आता है। तो ऐसे ही राजा सत्यव्रत से वो कह रहे हैं मेरी रक्षा करी। तो राजा ने, राजा जानते नहीं थे कि भगवान है, वो तो सोचे छोटी सी मछली है। राजा ने कहा चलो इसकी रक्षा कर देते हैं। तो उन्होंने एक जार लिया, पानी का एक जग लिया, पानी भरा और उसमें मछली को डाल दिया और लेकर आ गया, चलो रक्षा कर, घर पर ले आया, अपने महल में ले आया। इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। अज्ञात सुकृति मतलब जब हम जाने अनजाने में, अंध अनजाने में प्रमुखतः भगवान के किसी भक्त या भगवान की सेवा कर देते हैं, उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो यहां राजा सत्यव्रत उस अज्ञात सुकृति को पालन, उन्हें नहीं पता ये भगवान है, उन्हें नहीं पता कुछ, बस एक मछली की मुझे रक्षा करनी। तो जब हम साधारण कार्य करते हैं, रक्षा करते हैं, मान लीजिए वो मछली होती, भगवान नहीं होते, तो थोड़ा बहुत भौतिक लाभ मिल जाता राजा सत्यव्रत को। लेकिन यहां राजा सत्यव्रत ने भगवान की रक्षा की, ना जानते, जानते नहीं थे कि भगवान है, लेकिन अज्ञात सुकृति उनको प्राप्त हुई। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने जाने या अनजाने में किसी भक्त की सेवा कर दी होगी, किसी भक्त के लिए कुछ थोड़ा सा कर दिया होगा, और उसी कारण से हम आगे चलकर भक्ति में आते हैं। बहुत साधारण सी सेवा, रास्ता दिखा देना। रामानुजाचार्य जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, सन्यासी शिष्यों के साथ तिरुपति, वन के मार्ग करते करते गांव में से आए, वहां एक शूद्र पानी निकाल रहा था। तो उन्होंने प्रणाम करके पूछा तिरुपति का रास्ता कहाँ है, बता दो जरा। तो उसने ऐसे देखा, ये कौन आ गए ये लोग, उसने ऐसे हाथ दिखा दिया, वो बस कुछ कहा भी नहीं, उस तरफ है। रामानुजाचार्य ने पूर्ण दंडवत प्रणाम किया उसको, और सारे सन्यासी शिष्य देख रहे क्या हो गया हमारे महाराज को, इस शूद्र को, इसको प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है इस शूद्र को प्रणाम करने की, ऐसा क्या किया इस शूद्र ने, बात तक नहीं की, पूछा तो ऐसे दिखा दिया जाए उधर। तो उन्होंने बाद में पूछा, महाराज ऐसा आचार्य जी आपने ऐसा क्यों कर दिया? रामानुजाचार्य ने कहा उसने मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखलाया, तो मेरे लिए पूजनीय है वो। सो जो हमें वैकुंठ का रास्ता दिखलाते हैं वो भगवान के भक्त हैं, जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं वो भगवान के भक्त हैं, पूजनीय है हमारे लिए। इस बात को हम भूल जाते हैं, हम भक्तों को बहुत सरल ले लेते हैं, हम साथ में रहते हैं और या बार बार बात होती है भक्त बहुत, क्योंकि कोई भी भक्त आपको ये नहीं दर्शाएगा कि वे मैं बहुत महान भक्त हूं, जानते नहीं हूं, उल्टा भक्त बड़े सरल रहेंगे। ईश्वरपुरी, कई बार हम ये वर्णन कर चुके हैं, जब आए ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य अपने शालिग्राम शिला की पूजा में लगे हैं, ईश्वरपुरी ने आकर पूरा हंगामा नहीं किया कि भाई देखो कौन आ रहा है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य आया हूं, कहीं जाकर चुपचाप बैठ गए। अद्वैताचार्य को देखकर इतना आनंद आया मन में, वो सोच रहे तो कोई महान वैष्णव है, उनसे सेवा नहीं हो रही भगवान की, शालिग्राम का अभिषेक कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उधर है। उन्होंने पूछ लिया ईश्वरपुरी से, कौन है आप? ईश्वरपुरी, ऐसे शूद्र आदमी हूं, जा रहा था यहां से, थोड़ा अंदर आ गया बस। अद्वैताचार्य ने, उनको विश्वास नहीं हुआ, अपने शिष्यों को कहा शुरू हो जाओ। उनके शिष्य शुरू हो गए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयाप्य साधवी बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। शुरू हो गए श्लोकों पर, और जैसे जैसे ये श्लोक सुन रहे हैं, ईश्वरपुरी अपने आप को संभाल नहीं पाए, भावाविभोर हो गए, जमीन पर लौटने लगे। और उनको देखकर अद्वैताचार्य ने कहा ईश्वरपुरी, और कोई नहीं हो सकता, ये भाव, ये प्रेम, ये ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो थे नहीं उस समय, तो ईश्वरपुरी। तो भक्त को ये ऐसे भक्त होते हैं कि उनको देखकर ही इतना आनंद आता है। तो भक्तों की लेकिन बहुत जब हम निकट रहते हैं तो वो भाव चला जाता है, इसलिए हमेशा भक्त हमारे लिए पूजनीय है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो राजा सत्यव्रत ने अज्ञात सुकृति हासिल की, ले गए घर पर। तो रात में रखा, अगले दिन सुबह देखा तो मछली बड़ी हो गई, वो पूरे जग में नहीं आ रही, जार में नहीं आ रही। और वो कह रही है कि राजा ये क्या, यहाँ मेरे लिए बहुत स्थिति ठीक नहीं है, मुझे थोड़े बड़े बड़े जलाशय में लेके जाओ। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले गए, एक कुएं में डाल दिया, बड़ा कुआं था, कुएं में डाल दिया कि चलो अब यहां रहो आराम से बड़े होने तक। जैसे ही डाला वो वहां भी बड़ी हो गई, वो कुआं भी छोटा पड़ने लगा। अरे राजा ने देखा ये क्या हो गया, तो उसने कहा मछली का राजा ये तो बहुत छोटा हो रहा है, कोई थोड़ा और बड़ा जलाशय। राजा ले गए एक सरोवर में डाल दिया, जैसे ही डाला वो सरोवर से भी बड़ी हो गई। अरे राजा बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम यहाँ देखते हैं कि राजा ने सेवा नहीं छोड़ी, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। हम में से कोई होता तो हम कहते मरो अब कहाँ उठा के लेके जाएंगे, इतनी बड़ी हो गई हो हम क्या कर सकते हैं, किसने कहा था इतनी बड़ी होने के लिए, छोटे रहते एक दिन में इतने बड़े हो जाओगे, हम नहीं उठाएंगे। राजा उसको उठाकर लेके जा रहे, नहीं नदी में डाला, नदी से बड़ी हो गई। अब तो राजा ने आखिरी में ले जाकर उसको समुद्र में डाल, तो जैसे ही समुद्र में फेंकने लगे फिर से वो कहने लगी राजा राजा समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे बचाओ। राजा ने कहा अब समझ में आ गया, अभी तक नहीं समझा था मैं, अभी तक उनको नहीं पता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राजा ने कहा अब समझ गया। तो सत्यव्रत ने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा आप कौन है मुझे बताइए, अभी कोई साधारण मछली तो है नहीं, मैं अभी तक आपको ये मछली समझ रहा था, मछली तो है, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि एक कोई साधारण मछली एक ही दिन में इतनी छोटी से इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि समुद्र भी छोटा पड़ जाए उसके लिए। तो आप बताइए कि कौन है आप, और मुझे लगता है, फिर राजा ने कहा मुझे लगता है कि ये तो आप तो निश्चित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नहीं तो ये हो नहीं सकता कि आप इतने बड़े हो जाएं, और अगर हैं तो आप मुझे कृपया बताइए कि आपने ये रूप क्यों लिया है, क्या कारण है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उसकी सेवा से प्रसन्न हुए थे भगवान, क्योंकि उसने निश्चल भाव से सेवा की। देखिए जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा में आनंद आता है या सेवा के भाव में आनंद आता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवा एक क्रिया है, जैसे मान लीजिए कि आप बर्तन धो रहे हैं भगवान के, तो वो डेफिनेटली एक क्रिया है, लेकिन उसको किस चेतना में कर रहे हैं, किस मनोवृत्ति से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वो उसे सेवा या बोझ बनाए। इसीलिए सेवा का आनंद, या सेवा में कहना चाहिए कि बहुत प्रसन्नता हमें तब होती है जब हमारा भाव सही है, हमारी मनोवृत्ति सही है। तो इसीलिए क्रिया में आनंद नहीं आता, क्रिया को सेवा मनोवृत्ति बनाती है, नहीं तो केवल बर्तन धोना है, वो तो केवल झाड़ू लगाना है, वो तो केवल मंदिर मार्जन करना है या ड्रेसिंग करना है, वो सेवा नहीं है। किसी भी क्रिया को सेवा उसकी मनोवृत्ति बनाती है। हम किस भाव में सेवा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। बाहरी दृष्टि से दिखने में वो भले ठीक सेवा ना हो, लेकिन अगर भाव अच्छा है तो वो सेवा के रूप में स्वीकारा जाता है, और अगर बाहरी दृष्टि से बहुत अच्छी सेवा की है लेकिन भाव गलत है, स्वीकारा नहीं जाता, सेवा नहीं स्वीकारी जाती। एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक जिराफ जब पैदा होता है, जिराफ आप जानते हैं, वो जब पैदा होते हैं, माता जो होती है जिराफ बच्चे को जन्म देती है, तो जिराफ आप जानते हैं जमीन से बहुत ऊंचा होता है, जब खड़ा होता है उसके पांव बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जिराफ खड़े होकर जन्म देता है, लेट कर नहीं, बैठ कर नहीं। दरअसल ये नियम मनुष्यों के लिए भी है, अगर हम भागवत पढ़ें तो भागवत में ये कहा गया है कि बच्चा गिरता है जोर से। खैर जिराफ ऐसे जन्म देता है खड़े होकर, तो खड़े होकर जन्म देता है तो धार करके बच्चा गिरता है, मतलब जन्म लेते ही गिरता है धड़ाम करके, और फिर अभी अभी जन्म लिया है धीरे धीरे वो पांव पर खड़ा होना शुरू होता है, तो जैसे बस खड़ा हो रहा है तो जिराफ जो उसकी मां है उसको 1,00,000 मारती, वो दूर जाकर गिरता है, वो फिर से खड़ा होता है किसी तरह। आप सोचिए अभी अभी जन्म हुआ है, क्या ताकत होगी उसके पैरों में, क्या होगा उसके, तो फिर से धीरे 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 एक 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 ऐसे खड़ा होता है और मां जाके फिर से लात मारती है उसको। बाहरी दृष्टि से कार्य क्या दिख रहा है, अरे कैसी मां है। समझिए अगर कोई कोई मनुष्य के बच्चे को ऐसे करने लगे, बच्चे का जन्म हुआ बाद 2 थप्पड़ लगे, थार अभी जन्म हुआ ही है, बच्चा रो रहा है जो, और 2 थप्पड़ लगे, तो लोग क्या कहेंगे, क्रूर है, मां है क्या है, मार डालेगी अपने बच्चे को। ऐसे ही लग रहा है जिराफ का, मार डालेगी बच्चे को, और 1,00,000 मारती है। ऐसे जब 2-3 बार हो जाता है, जब तक बच्चा खड़ा होकर भागना शुरू नहीं कर देता, वो मारती है। तो दिखने में क्या लग रहा है, बहुत गलत काम है, लेकिन है क्या, वो मां जानती है कि जो जिराफ का बच्चा होता है ना, उसका जो उसकी जो चमड़ी होती है, मांस जो होता है, बहुत बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और शेर को बहुत प्रिय है वो। तो मां जानती है कि ये बच्चा है, कभी ना कभी शेर आक्रमण करेगा मांस के लिए, अगर इसने भागना नहीं सीखा तो रक्षा कैसे करेगा, तो इसलिए वो सिखा रही है। तो भाव क्या है उसका, उसका भाव उसको कष्ट देना नहीं है, लात मारना नहीं है, उसका भाव है उसकी रक्षा करना। तो इसीलिए वो सेवा है, मां बच्चे की सेवा कर रही है लात मार के। तो इसीलिए हमने कहा कि क्रिया को सेवा मनोवृत्ति बनाती है, हम भगवान की सेवा करें, सही भाव में सेवा करें, और तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब राजा पर प्रसन्न हुए, भगवान ने फिर कहा उनसे, भगवान ने राजा ने पूछा, भाई बताइए आपका क्या उद्देश्य, आपने ये रूप क्यों लिया है। तो उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होने वाला है, और 7 दिन बाद जब प्रलय होगा तो उस समय मैं चाहता हूं कि तुम कुछ वनस्पति इत्यादि को लेकर, वनस्पतियों को, औषधियों को लेकर, और कुछ साधु संतों को लेकर एक बोट में चढ़ जाना, बोट आएगी तुम्हारे लिए, 7 दिन बाद जब प्रलय होगा तुम्हारे लिए मैं बोट भेजूंगा, उसमें चढ़ जाना, और फिर वो जल में, प्रलय के जल में तैर रही होगी बोट जाएगी, तो क्योंकि प्रलय का जल बड़ा भयंकर होता है, तो तुम क्या करना कि वासुकी जो कि सर्प है उसको रस्सी बना लेना और बोट से बांध देना, और मेरे मेरे ऊपर बांध देना, एक आप देखते मछली का एक हॉर्न होता है, सिंह होता है, तो उस पर बांध देना, और फिर मैं तुम्हें पूरे प्रलय से बचा लूंगा। तो राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर ये कहकर साथ साथ में भगवान ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तो वो प्रसन्न हो गए। फिर उस समय उन्होंने तुरंत भगवान पर ध्यान करना शुरू कर दिया। तो 7वें दिन जैसे भगवान ने कहा था, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे समुद्र बढ़ने लगा, और फिर अचानक बहुत तीव्रता से बढ़ गया, सब जगह जल जल जल, पूरा जलमग्न हो गया, और जैसे भगवान ने कहा था एक बोट आई, राजा तुरंत उसके ऊपर चढ़ गए, वनस्पतियों को, औषधियों को, साधुओं को लेकर उस पर चढ़ गए, और जब चढ़ने लगी बोट बहुत हिलने लगी, तो साधु संतों ने राजा से कहा, राजा भगवान की शरण लो, ध्यान करो भगवान पर। और उस समय जब उन्होंने ध्यान किया तो भगवान मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। कितने कितने थे, 80,00,000 मील लंबे, 80,00,000, यस। तो इतने लंबे भगवान, इतना लंबा वो था। तो देखिए जब मत्स्य अवतार भी लेते हैं, कोई साधारण मछली नहीं है, इतने लंबे, और वो प्रकट हुए। राजा ने देखा, राजा तो जानते थे अगर कोई और होते तो घबरा जाते इतनी लंबी मछली देखकर। देखिए जब भगवान का प्रेम हृदय में होता है तो भगवान का हर रूप सौम्य लगता। जैसे जब नरसिंह देव प्रकट हुए, क्या रूप था नरसिंह देव का, और कैसे थे वो, फाड़ रहे थे हिरण्यकश्यपु के पेट को, फाड़ दिया, आंतड़ियां निकाल ली, ऐसे डाल ली गले में भगवान ने। आप सोचिए, ऐसा नहीं था कि हिरण्यकश्यपु की आंतड़ियां बहुत साफ सुथरी थी, फूल लग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, खून 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 लथपथ था पूरा, ऐसे फाड़ा उसके पेट को और ऐसे ढूंढ रहे थे। कर्नाटक में दास प्रथा हुई है, बहुत महान भक्त हुए हैं, पुरंदर दास, कनक दास, तो इन लोगों ने भगवान की लीलाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, भक्त भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, प्रहलाद देख रहे हैं, क्या भाव है, क्या भयंकर लग रहा है। अभी अगर हम वर्णन ही कर रहे हैं तो सुनने में कितना भयंकर है कि भगवान बड़े गुस्से में है, शेर का शरीर है, आधा शेर आधा नर, और अपने नाखूनों से फाड़ दिया हिरण्यकश्यपु के पेट को और उसकी आंतड़ियों को निकालकर गले में डाल रहे हैं। ऐसा भयंकर सामने अगर आप देखोगे तो आप तो बेहोश हो जाओगे। लेकिन जो भक्त वो क्या देख रहे हैं, वो लोग लिखते हैं कि दरअसल भगवान ने जब पेट फाड़ा और अंदर ऐसे हाथ डाल रहे थे तो वो देख रहे थे कि यही यही इसी से एक प्रहलाद मेरा एक भक्त निकला, देखूं और एक दो कोई भक्त तो नहीं है वहां पर छुपे हुए। और फिर जब आंतरिया लेकर डाली है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भी भक्त है जय विजय, तो वो भी सेवा करना चाहता था। दरअसल ऐसा हो रहा था कि जब हिरण्यकश्यपु ऐसे मरने वाला था प्राय, तो उसने देखा प्रहलाद वो बड़े प्रेम से भगवान को देख रहा है, तो उसको स्मरण आ गया कि रे तो भगवान है, मैंने क्या कर दिया, भगवान आया मैंने सेवा नहीं की, हार तक नहीं डाला भगवान को। तो भगवान ने समझ लिया, भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, उसकी आंतड़ियां निकाली और डाल दी, मैंने स्वीकार कर लिया। तो देखिए कहां आंतड़ियां, कहां इंटेस्टाइन खून से सनी हुई और कहां पुष्प का हार, भक्त उसको देखते हैं। प्रहलाद ने जब देखा नरसिंह देव को तो प्रहलाद को कोई भय नहीं हुआ, सब घबरा रहे थे, देवता घबरा रहे थे, ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, लक्ष्मी देवी घबरा गई, सब घबरा गए थे, प्रहलाद प्रेम से, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। और जब भगवान चाट रहे थे उसको, प्रहलाद को बड़ा आनंद, तो इसी तरह सत्यव्रत देख रहे हैं, उनको बहुत आनंद आया भगवान को देखकर, और उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, केवल आपकी कृपा से, जब कृपा हो जाती है व्यक्ति को, आपकी कृपा मिलती है, तो एक एक अज्ञानी पुरुष, एक अज्ञानी व्यक्ति जो जो केवल भोगों में पड़ा हुआ है, जिसको ये लगता है कि जीवन का उद्देश्य बस खाओ पियो मजा करो है, ऐसा अज्ञानी पुरुष आपकी कृपा से उसको अवसर मिलता है भक्तों के संग में आने का, वो भक्तों से मिलता है, ये आपकी कृपा है। राजा सत्यव्रत कहते हैं कि आपकी कृपा से वो भक्तों से मिल पाता है, अन्यथा राजा कहते हैं कि एक आशा बनी रहती है व्यक्ति को कि मुझे आनंद मिलेगा, और उसीलिए वो कार्य करता है, लेकिन वही कार्य उसको कष्ट देता है। और ये हम सबको अनुभव है, हम सोचते हैं कि मुझे इससे विवाह कर लूं बस जीवन सफल, और आप सब विवाहित हैं, हम ज्यादा विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहते, वही कार्य हमें कष्ट देता है। हमें लगा था कि बस विवाह हो जाएगा, होम स्वीट होम, हैप्पी लाइफ, क्या क्या आशा की थी, प्रसन्न होंगे, नहीं होते। तो राजा सत्यव्रत कहते कि आशा रहती है प्रसन्नता की, लेकिन वही कार्य उसको कष्ट देता है, वही कार्य उसको दुख देता है। और इसीलिए भगवान जब वो आपकी सेवा में लगता है तब वो सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, राजा सत्यव्रत कहते हैं कि मेरे हृदय में भी ऐसी गांठें हैं, आसक्ति की गांठें, काट दीजिए उसे, ये झूठी इच्छाओं की गांठें हैं भगवान, मैं भी इच्छा कर रहा हूं ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, उसको काट दीजिए। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, उसको मुक्त होना है पूर्ण रूप से, तो क्या करना चाहिए, कहना कहते हैं कि उसको ये इस जगत के शुभ अशुभ इत्यादि इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, उसको अपने आप को अग्नि में डालना चाहिए। जैसे वो उदाहरण देते हैं सोने का, चांदी का, या सोना देख जब देखते हैं तो सोने को जब आग में तपाया जाता है तब वो निखर कर आता है, शुद्ध हो जाता है। तो वो कहते हैं जब तक हम अपने आप को अग्नि में नहीं जलाएंगे, किस अग्नि में, कृष्ण भावनामृत की अग्नि, भक्ति की अग्नि, हर जीव को जो इस तरह से आसक्त है, जिसके हृदय में गांठें बंधी हुई हैं, जो केवल भोग आनंद लेना चाहता है, राजा सत्यव्रत कहते जला दो अपने आप को कृष्ण भावनामृत की अग्नि में, शुद्ध हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे, अन्यथा मुक्ति नहीं है। तो फिर मान लीजिए कि राजा कहे नहीं नहीं देवता हैं, वो लोग सब अच्छी स्थिति में हैं, या उनसे भी तो कृपा, और भी लोग कृपा करने के लिए हैं, मेरे पास मेरी कृपा से ऐसा होगा, ऐसा नहीं। तो राजा कहते हैं हाँ देवता देवता कृपा करते हैं, लेकिन वो जो कृपा करते या कोई भी व्यक्ति कृपा करता है उसकी कृपा और आपकी कृपा में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि जो वो लोग देवता या अन्य कोई भी व्यक्ति कितनी भी कृपा कर ले, वो आपकी कृपा के 1/10,000वें भाग के बराबर भी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आत्मा का आकार क्या है, केशाग्र शत भागस्य, कि केश के अग्र भाग का 10,000 टुकड़ा किया जाए तो वो एक टुकड़ा आत्मा है। इसी तरह राजा सत्यव्रत कहते हैं अगर कृपा के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, एक टुकड़ा वो देवी देवताओं की आत्मा और आपकी वो कृपा है, और आपकी कृपा कोई तुलना नहीं कर सकते। इसलिए राजा कहते हैं मैं आपकी शरण लेता हूं। तो भगवान मान लीजिए पूछे भाई मेरी शरण क्यों ले रहे हो, बहुत सारे लोग हैं उनकी शरण लो। तो राजा कहते इस जगत में अंधे हैं वो अंधों की शरण लेते हैं, प्रहलाद महाराज ने भी इस बात को कहा है। राजा कहते अंधे लोग हैं अंधों की शरण लेते हैं, मिलेगा क्या अंधे को अंधे की शरण लेकर? वो भी गड्ढे में गिरेगा, मैं भी गड्ढे में गिरूंगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे इस जगत में व्यक्ति अंधों की, या कहना चाहिए कि धोखेबाज गुरुओं की शरण लेते हैं, मूर्ख है वो व्यक्ति। राजा कहते हैं क्योंकि ऐसे गुरु क्या करते हैं, वो उनको उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन वो सारे उपदेश निर्देश बंधन के लिए होते हैं, मुक्ति के लिए नहीं होते। मैं ऐसे किसी गुरु की शरण नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे किसी व्यक्ति की शरण नहीं लेना चाहता, क्योंकि मूर्ख हैं वो लोग। मूर्ख क्यों है? क्योंकि भावनाएं उनकी भोग करने की इच्छा बनी हुई है, तो वो आपको अपना मित्र मान ही नहीं सकते, आपको नियंता मान ही नहीं सकते, आपको परमात्मा मान ही नहीं सकते, आपको परम गुरु मान ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी। इसलिए मैं ऐसे किसी झूठे धोखेबाज गुरु की शरण नहीं लेना चाहता, मैं तो आपको समर्पण कर रहा हूं, आप ही के उपदेश हैं, आपकी आज्ञा होगी, आपके इच्छा होगी तो मेरे हृदय की ये जो गांठे हैं वो कट जाएंगे। इसलिए हे प्रभु मुझे मेरी क्या गति है वो बताइए, मुझे क्या करना है वो बताइए, मैं आपकी शरण ले रहा। तो उस समय फिर भगवान ने प्रसन्न होकर उनको सांख्य योग का वर्णन किया। देखिए जो सांख्य योग है कई बार वर्णन हुआ है, भगवान कपिल ने किया, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया, और मत्स्य अवतार रूप में भी भगवान ने सांख्य योग दिया। तो राजा सत्यव्रत को सांख्य योग का वर्णन उन्होंने किया, और फिर इस मनवंतर चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनवंतर आया, उसमें वो वैवस्वत मनु के पुत्र के रूप में आए। तो वो अगला जो उनका था वैवस्वत मनु के रूप में आए श्राद्ध देव सूर्य, जैसे हम लोग इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह, तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में तो वो आए। और इस तरह उन्होंने भगवान मत्स्य अवतार को प्रसन्न किया। सो अब सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, तो वो श्रुति फल देते हैं। श्रुति फल मतलब आपने जो कथा सुनी तो उसको उसका क्या लाभ है वो बताते हैं। तो ये बहुत सुंदर भागवत में कहा गया, उन्होंने दोनों के लिए श्रुति फल दिया। एक उन्होंने श्रुति फल दिया किसके लिए? एक उन्होंने श्रुति फल दिया सुनने वाले की, कि जो सुन रहे हैं उनका क्या है, और एक उन्होंने श्रुति फल दिया बोलने वाले के लिए। दरअसल हमने ये कथा बोली क्योंकि हमें वो श्रुति फल बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा कि चलो कथा बोल देते हैं। तो सुनने वाले के लिए क्या उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको सुनता है, इस कथा को, संवादम महदख्यानम, महदख्यानम मतलब ये जो संवाद है, इसको जो राजा सत्यव्रत का और ये जो मत्स्य अवतार का है, तो कहते हैं कि ये बहुत ये दिव्य आख्यान है। तो जो भी सुनता है उसके जितने भी पापमय जीवन हैं, पापमय जो फल हैं जीवन के, या कष्ट पापमय कर्म फल हैं, वो सब नाश हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए पापमय जीवन समाप्त हो जाता है केवल सुनने से। और जो बोलता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को, मत्स्य अवतार की ये जो कथा है उसको सुनाता है, मत्स्य अवतार और सत्यव्रत की, तो वो कहते हैं निश्चित, निश्चित क्या कहते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और ऐसा संशय ही नहीं है, असंशयम, तो ऐसा कोई संशय नहीं है कि भगवान के धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, निश्चित जाएगा। तो हमने जब पढ़ा तो हमने कहा चलो थोड़ा तो हम भी प्रयास कर लें, इस कथा को कहें, ताकि सुखदेव गोस्वामी के शब्द, हम विश्वास करते हैं कि कभी झूठे नहीं होते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि ऐसा होगा, तो विश्वास करके इस कथा को हमने आप सबको सुनाया। क्षमा कीजिए थोड़ा सा समय अधिक हो गया, 2-3 मिनट। सो आभारी हैं आप सबके कि आपने हमें अवसर दिया भगवान की इस कथा को सुनाने का, और इस कथा का सार, जैसे कई शिक्षाएं हम लोग इससे ले चुके हैं, तो इस कथा का सार क्या था, क्या है? इस कथा का सार है कि भगवान, कई शिक्षाएं हम इससे ले सकते हैं। पहला कि श्री कृष्ण भक्तों पर आश्रित होने में आनंद लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं, और इसमें उन्हें आनंद आता है। तो इसीलिए ये पहला चीज हम लोग देखते हैं कि भगवान आनंद लेते हैं भक्तों के अधीन रहने में। क्यों? क्योंकि प्रेम है भक्तों से, जिससे प्रेम होता है उसके अधीन रहने में व्यक्ति बहुत आनंद लेता है, अन्यथा किसी के अधीन रहने में आनंद नहीं आता। लेकिन जिससे प्रेम है, सच्चा प्रेम है, उससे उसके अधीन रहने में ही आनंद आता है। और इसीलिए जीव को कृष्ण से प्रेम करना है ताकि उनके अधीन रहने में आनंद आए, और प्रेम हमारा है भी कृष्ण से। तो इसीलिए पहला चीज हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण आनंद लेते हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि कैसे हयग्रीव के रूप में जब चुरा लिया, तो हमें अपनी चेतना हमेशा भगवान में रखनी चाहिए। चेतना चुराने मत दीजिए किसी असुर को। आपका सबसे बड़ा धन है कृष्ण प्रेम, और इसको चुरा लेते हैं ऐसे असुर, जो कहां है, इस जगत में है असुर, अवतारी देश में है, भारत में है, कहां है असुर? यहां है, यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इधर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उन असुरों को ये क्या करने के लिए बैठे हैं, कृष्ण भक्ति का धन चुराने के लिए, अनुमति मत दीजिए, चुराने मत दीजिए। और फिर आगे हमने सत्यव्रत की कथा में देखा कि कैसे अज्ञात सुकृति उनको प्राप्त हुई। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कोई ना कोई छोटी मोटी सेवा कर दें भगवान की, भगवान के भक्तों की, जहां अवसर मिले। जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, कोई छोटी सी सेवा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। क्या किया था राजा ने, एक छोटी सी मछली को उठा के लाके बस आश्रय दे दिया, छोटी सी सेवा। तो छोटी सी सेवा हम कर सकें। और आगे सेवक का भाव की चर्चा हमने की कि सेवा एक क्रिया है, क्रिया को सेवा बनाता है भाव, अन्यथा वो केवल एक श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ का समय हो जाएगा। तो इसलिए मनोभाव, सही सेवा का भाव उत्पन्न करें। और फिर प्रार्थनाओं में हमने देखा कि कितना सुंदर बात राजा सत्यव्रत ने कही कि मैं बंधा नहीं रहने चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में गांठें बंधी रहें, काट दीजिए, मैं मूर्ख नहीं हूं उन लोगों की तरह जो झूठे लोगों का आश्रय लेते हैं, मैं तो केवल आपकी शरण आना चाहता हूं। तो इस तरह से मत्स्य अवतार की कथा हमने संक्षेप में आप सबको सुनाई और आशा करते हैं कि आपको कुछ लाभ हुआ होगा। आप में से किसी के अभी कोई अगर प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इसको
हरे कृष्ण अतुल कृष्ण प्रभु
कर दे।
आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी?
हाँ जी बोलिए प्रभु।
हरे कृष्ण। सो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना उत्कृष्ट भगवान की इस लीला के बारे में आपने बताया। बहुत ही हमारा सौभाग्य है आज के हमारे को आज आपका संग लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो प्रभु एक प्रश्न, हालांकि आपने जो कथा की वो इतनी सुंदर है, तो बहुरू प्रभु ने मुझे कहा था कि आप हमारी यात्रा की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स देना, तो मैं कहूंगा थोड़ा जो मेरे इसमें रियलाइजेशन थोड़े से समझ में आए हैं मुझे आपकी बातों से।
किसी के कोई प्रश्न नहीं है प्रश्न तक?
हाँ तो मैं प्रश्न, मेरा भी एक प्रश्न है प्रभु जी, बट अच्छा पहले मैं अन्य लोगों को चांस देंगे। मैं प्रश्न अनुया मल्होत्रा माता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपने नरसिंह देव के बारे में जो बोला। हम तो उनको सीरियसली एक पापा के उसमें ही मैं उनको लेती हूँ कि ही इज द सुप्रीम फादर ऑफ माइन, मींस जो भी हो मैं उनके पास ही जाती हूँ हमेशा, उनको बोलती हूँ। और उनका वो रूप देख के ना सच में डर लगता है, बट जो अपने प्यार का भाव एक्चुअली लेके आए हो ना आप दिल में, वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऑलवेज फादर एक वो रूड वे में ही हमें दिखते हैं ना, पर ये तो सच में दिल में बहुत प्यारा भाव आ गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल लेक्चर। क्योंकि आप सही बोलते हो कि जितनी श्रुति हो ना उतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम बढ़ता है, एंड दैट्स एक्चुअल। एंड आई एम सो लकी कि मेरे को ये चांस कृष्ण ने दिया कि आज मैं ये लेक्चर अटेंड कर पाई। थैंक यू सो मच।
थैंक यू अनुया। हरे कृष्ण।
किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ अमेठी राजीव जी आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी जैसे कृष्ण भगवान ने बोला है भगवत गीता में अर्जुन से कि मैं ही सबका पिता हूँ, और हम जानते हैं कि हम सभी उन्हीं के अंश हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कभी कभी कि जब आए भगवान जैसे सत्यवती मुनि के सामने आए मस्त रूप में, तो वो पहचान क्यों नहीं पाए प्रभु जी उनको, फिर जबकि उन्हीं के अंश है हम लोग, पहचान क्यों नहीं पाते भगवान
ही स्वयं। हम लोग उनके अंश हैं और पहचान नहीं पा रहे हैं उनको। उसका कारण ये है कि अंश जब अपनी मूल अवस्था में होता है तो उसको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जब वो अपनी मूल अवस्था में नहीं है, अपनी ही स्थिति को भूला हुआ है, तो अपनी स्थिति भूलने के कारण फिर कैसे वो भगवान को पहचान सकेगा? क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए संबंध की आवश्यकता है। जब हम संबंध को भूल जाते हैं भगवान से, तो भगवान को पहचानना संभव नहीं है। इसीलिए भक्ति के द्वारा हम उस संबंध को पुनः जागृत करते हैं और फिर हमें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान सामने आए तुरंत पहचान गए भगवान को, क्यों? 6 महीना बहुत कड़ी तपस्या करके अपने आप को शुद्ध कर चुके थे भगवान को जानने के लिए। तो भगवान पूर्ण शुद्ध हैं और उनको जानने के लिए वो शुद्धता चाहिए जो अशुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए चुंबक और लोहे का स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन अगर लोहे में जंग लगा हो तो कितनी ही पावरफुल चुंबक क्यों ना हो, वो अट्रैक्ट नहीं करती, आकृष्ट नहीं करती। इसी तरह कृष्ण बहुत शक्तिशाली चुंबक हैं और हम लोग लोहे के टुकड़े, हमारा स्वभाव ही है उनकी ओर आकृष्ट होना, लेकिन क्योंकि जंग लगा रखा है इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन ये जंग हट गया बड़ी सरलता से उनके प्रति प्रेम और आसक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है प्रभु।
थैंक यू प्रभु जी. श्वेता जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन.
अवतारी देश के भी कुछ भक्त अगर पूछना चाहें तो अच्छा होगा. बट एनीवे यस श्वेता माता जी पूछिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. सेवा का भाव किस प्रकार से हमारे अंदर आएगा और मतलब जो सेवा की तीव्रता है वो कैसे होगी आएगी हमारे अंदर.
सेवा की तीव्रता हम सबके अंदर तब आ सकती है जब हम सबसे पहले सही मार्ग निर्देशन में सेवा कर रहे हो. दूसरा, जब हम चाहे हमें पसंद हो या ना हो लेकिन हम सेवा को सतत करते रहे तो ये हमें जरूरी है. एक सही मार्गदर्शन हो, दूसरा क्षमा चाहते, दूसरा बिना रुके हम सेवा कर सकें चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें सेवा को करते रहना चाहिए. तीसरा, जिन लोगों ने अच्छा सेवा का भाव उत्पन्न किया है उनके साथ सेवा करनी चाहिए क्योंकि उत्साह ये एक छुआछूत की बीमारी की तरह है, बहुत जल्दी फैलता है. तो आप अगर लोगों के साथ है जिनके अंदर उत्साह है तो फिर बहुत जल्दी आप में भी उत्साह आएगा. और चौथा चीज, अधिक से अधिक हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए. ज्ञान उत्साह का वर्धन करता है, अज्ञान ये निराशा को बढ़ाता है. तो इसीलिए ज्ञान का वर्धन होगा अपने आप उत्साह बढ़ेगा. और अंततः भगवान से बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करना कि मेरी एक ही इच्छा है, बस आपकी सेवा कर सकूं. सही भाव नहीं है लेकिन अगर सही भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर आपकी कृपा से अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है. उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए. ठीक है.
यस प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच.
यस. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा
प्रभु जी. लेक्चर बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत आभारी हूँ आपका. आपने चुंबक और लोहे का जो उदाहरण दिया उससे मुझे बहुत कुछ समझने में, जीवन में जो है अच्छा समझने लग जाऊंगा. ऐसा बहुत अच्छा, मतलब लेक्चर बहुत अच्छा लगा. बहुत आभारी हूँ सर आपका मैं आपका प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम.
थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण राम राम. हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
कविता माता जी यू कैन.
हरे कृष्ण प्रभु जी. आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी.
प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे सेवा की बात अभी हो रही थी, कई बार हमें मतलब चांस मिलता है कि हम सेवा कर पाए लेकिन थोड़ा घर के माहौल के हिसाब से हम नहीं कर पाते कि घर वाले नाराज हो जाएंगे कि तुम ये लगे रहते हो इस टाइप से. तो उसमें हमें कैसे करना चाहिए? मन है करने का लेकिन हमें ये डर लगता है कि घर वाले गुस्सा होंगे कि तुम 24 hours ऐसे ही एंगेज रहोगे तो घर को कब टाइम दोगे, घर वालों को कब टाइम दोगे. ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए? सेवा लेनी चाहिए?
जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो स्वाभाविक है कि सेवा करने में कई चीजें आड़े आती हैं. हमें स्थिति के अनुसार उन चीजों को पार करके सेवा बनाए रखने का प्रयास करना है. तो उनमें से एक है कि जो पारिवारिक स्थितियां या व्यक्ति जो सेवा में सेवा नहीं, जिनके कारण हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयास सबसे पहला ये करना चाहिए कि पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए. परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद इत्यादि इस विषय पर नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं जिससे उनको भी प्रेरणा मिले. हम ये भी तो चाहते हैं कि भक्ति में उनको भी प्रेरणा मिले, तो इसलिए कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो. और कभी कभी ये जो विरोधी अवस्थाएं होती हैं ये हृदय में भक्ति की तीव्रता को बढ़ाने में बहुत मदद करती. जो विरोध होता है, जो विरोध नहीं है सब कुछ ठीक है तो व्यक्ति खुद भी बहुत रिलैक्स हो जाता है लेकिन जो विरोध है तो फिर और तीव्रता बढ़ती है. तो इसको भगवान की एक योजना मानना चाहिए कि भगवान आपने ये व्यवस्था की है कि मैं और तीव्रता, क्योंकि अन्यथा मेरे हृदय में तीव्रता नहीं होती. हो सकता है कि सब स्थितियां अच्छी होती तो स्वाभाविकता कुछ आसक्ति बढ़ जाती लेकिन अब ऐसी स्थिति में आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। तो कभी कभी विरोधी स्थितियां अच्छी होती हैं, लेकिन जहां स्थिति में है उसमें बिना विरोध के, बिना वाद विवाद के पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए जितना कर सके उतना करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करा और उसके कारण परिवार में कष्ट हो रहा है, परिवार में तकलीफें हो रही हैं, आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे बढ़ें, आप भले एक सेवा कर सकें, छोटी सेवा कर सकें, उतना कीजिए, प्रेम से अच्छे भाव से कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। और अगर नहीं भी कर पाए, समझिए ऐसी स्थिति हो घर में कि कोई सेवा नहीं कर सकते, मन में कीजिए, भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान मन में की गई सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बढ़ाते रहिए कि हमें करना है। एक दिन भगवान व्यवस्था ऐसी करेंगे कि आपके घर में भी सारे घर के लोग भक्त होंगे और आप सब मिलकर बड़े अच्छे से प्रेम से सेवा कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, रसामृत प्रभु के आदेश है, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी, एक अवतारी देश भक्तों के बिहाफ पे एक्चुअली मेरा भी एक प्रश्न था जो पहले मेरे लिए है, मैं पूछता हूँ और फिर आपको। तो प्रभु जी, आपने क्लास के बीच में एक बात कही कि कभी कभी हम भक्त जो होते बड़े सरल होते हैं और हम उनको बहुत ही इजीली ले लेते हैं और बार बार बात होती है, मुलाकात होती है तो बहुत निकट रहने से वो भाव चला जाता है ना, जैसे कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंप्ट। तो किस प्रकार से भक्त जो है उनको हम अन्यथा न लेवे और हमेशा वो भाव जो हमारा है उनके प्रति बना रहे, चाहे हम उनसे किस जो डीलिंग करते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली?
या इसको प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को हमेशा एक नए भक्त के भाव में रखना चाहिए। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब मैं यात्रा इंचार्ज हो गया, अब मुझे ये सेवा मिली, अब मैं श्रेष्ठ हो गया, सीनियर हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये भाव आने से हम फिर दूसरों के प्रति वो सच्चा आदर उत्पन्न नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण ये है कि हम हमेशा अपने आप को एक नए भक्त के रूप में रखें, कि हम हैं नए भक्त। रखें मतलब दिखाएं, नहीं केवल कि अंदर से हृदय में हो, अरे मैं तो इतना सीनियर हूं, लेकिन दुख में नम्रता से नहीं, हम जाने कि हमारी कोई नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े महान महान भक्त हैं, हमारी क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो पहला ये भाव होना चाहिए कि अपने आप को प्रयास करना है कि कभी बहुत श्रेष्ठ बहुत बड़ा भक्त ना माने, जिससे अपराध ना हो या भक्तों के वैल्यू समझ में आए। दूसरा चीज, आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन क्या करें कि मैं अब तक यहां इस भक्ति में स्तर तक पहुंचा हूं तो किसके कारण। और अगर आप बड़ा गंभीर आत्मचिंतन करेंगे, प्रामाणिक ईमानदारी से, आप पाएंगे कि आपके कारण नहीं, भक्तों के कारण। अगर कोई भक्त ये कहता है कि मेरे कारण मैं सब आगे बढ़ा हूं, तो उसका फिर आत्म जो कर रहा है वो प्रामाणिक नहीं है। तो ये दूसरी चीज हमें करनी चाहिए। तो पहली चीज, अपने आप को हमेशा नए भक्त के रूप में रखिए। दूसरी चीज, आत्मनिरीक्षण हमेशा, कि मैं अब तक पहुंचा, इतना आगे कैसे आ गया मैं भक्ति में, क्या हुआ, किसने मुझे सपोर्ट किया। आप देखोगे सब कुछ भक्तों के कारण हुआ। एक भक्त आपको कोई किसी ने मार्गदर्शन दिया, जब आप आए तो भक्तों ने आपको संभाला, फिर आगे भक्त ने बढ़ाया, फिर एक भक्त ने ही आपको कुछ प्रेरणा दी कि आप कुछ बड़ा करो, आप प्रवचन दो, आप मैनेजमेंट करो, ये सब। तो जो भी हुआ भक्त के कारण, और हम आज जो कर रहे हैं, ठीक है अब तक हो गया, आज जिसके लिए हम प्रसिद्ध हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रवचन के लिए प्रसिद्ध है, तो उस व्यक्ति को अपना सोचना चाहिए कि आज जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूं क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो कुछ प्रभुपाद ने लिखा है उसी को दोहरा रहे ना, आपके मन से तो कुछ नहीं बोल पा रहे, आपके पास कोई क्षमता नहीं है, आपने केवल पढ़ा और उसको बोल दिया, तो ग्लोरी किसकी है, प्रभुपाद की। आपने कोई सन्यासी से सुना और बोल दिया, ग्लोरी किसकी है, उन सन्यासी की, हमारी नहीं है। तो हम प्रसिद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा रहे हैं। तो ये भाव कभी जाना नहीं चाहिए, तो तब हम भक्तों को, और इसी तरह हरेक भक्त को हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे बताकर या बिना बताए, कि हर एक भक्त के अंदर अच्छा गुण देखने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे से श्रेष्ठ ज्यादा इसमें क्या गुण है, एक प्रॉपर बहुत अच्छी तरह। और हम देखेंगे कि कोई भक्त हमें दिखेगा बहुत अच्छा जप करता है, कोई दिखेगा वो बहुत अच्छा मृदंग बजाता है, मुझसे तो ऐसे एक दो नहीं बजते, ये बहुत अच्छा बजाता है, या कोई बहुत अच्छा जप करता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, कोई बहुत अच्छा ड्रेसिंग करता है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। तो हर भक्त में ये देखिए, धीरे धीरे भक्तों का अप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसी कथाओं को, लीलाओं को भगवान की सुनना, जिसमें भगवान स्वयं, जैसे अगर हम दुर्वासा मुनि की कथा पढ़ते हैं, जहां दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए और भगवान ने भक्तों का दिल खोल कर गुणगान किया है वहां पर, कि भक्त हम भक्त पराधीनो, भक्त मेरे हृदय में, मैं भक्तों के हृदय में, तो ये सब चीजों को सुनने से भी धीरे धीरे अप्रिशिएशन बढ़ता है। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आभारी हैं हम प्रभु जी आपके, बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमारी यात्रा के लिए आज आगे आपने ये जो कथा की है, और सबसे पहले आपने शुरुआत में हमको बहुत प्रेरणा दी, चाहे हम कैसे भी नई भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ही प्रेरणास्पद बात कही। और मैं अभी सोच रहा था प्रभु जी कि हमने तो ये, क्योंकि जूम सेशन है तो हमने तो आपको हार तक नहीं पहनाया, माल्यार्पण भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया, लेकिन जैसे भगवान ने वो स्वीकार कर लिया था हिरण्यकश्यप के अंतड़िया, उसी प्रकार से आप हमारा ये जो दंडवत प्रणाम है स्वीकार करके। और प्रभु जी बहुत अच्छा आपने एक बात कही कि श्रीमद् भागवतम में यदि कोई कथा है तो वो लीला हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के बारे में है, और भगवान पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए, और जो व्यक्ति भक्ति तीव्रता से नहीं भी कर पा रहे हैं उनको भगवान की इस कथा को सुनना चाहिए, ताकि भक्ति में तीव्रता बढ़े। और आपने अंत में भी यही उत्तर इस प्रकार से दिया, और शुरुआत आपने जैसे करके बताया कि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा जो हमारे भी मन में होता है कि भगवान इतना निम्न स्वरूप क्यों लेते हैं, जैसे मत्स्य का, वराह का, और आपने कहा कि बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है प्रेम, दूसरा आपने कहा रक्षा, जैसे भगवान गाय की, ब्राह्मणों की, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही थी कि गाय का शरीर का एक भी वस्तु जो है वो व्यर्थ नहीं है, हमें गायों की बहुत सेवा करनी चाहिए। और धर्म की ग्लानी है, जब हम भगवान को भूल जाए तो भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं, और वेद भगवान से आए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, और भगवान ही वेद के अंतिम लक्ष्य है, तो इसके लिए वेदों की रक्षा करने के लिए भी आते हैं। और हालांकि भगवान इस प्रकार से निम्न ये स्वरूप लेते हैं, लेकिन जैसे हवा पवित्र है उसी प्रकार से भगवान अपनी दिव्यता जो है वो नहीं छोड़ते। प्रभु जी बहुत बड़ा अच्छा ये बात आपने बताया, और आपने बताया जो प्रकार से कि जो दो मत्स्य अवतार हुए हैं उसमें वेदों को बचाने के लिए भगवान पहले प्रकट हुए, और ये बड़ी गंभीर बात है कि असल जो है वो वेद चुरा लेते हैं, और हमें इस ज्ञान को अपने हृदय से चुराने नहीं देना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के वश में रहते हुए। और समाज जो है वो हमारे मनोभाव का प्रतिबिंब है, और हम क्या देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकता है, लेकिन हमको इन दोनों से ऊपर उठ के कृष्णात्मक जो है वह होना चाहिए, और कृष्ण को जीवन में लाएंगे तो नकारात्मकता निकल जाएगी और केवल कृष्णात्मकता जो है वो रह जाएगी। और बहुत अच्छा एक और जो चीज मुझे बहुत पसंद आई प्रभु जी, जो आपने बताई, आई एम श्योर सभी भक्तों को बहुत इसका, कि क्रिया जो है वो हमारे मनोभाव से बनती है, सेवा जो है, अगर सेवा के भाव से क्रिया करते हैं तो वो सेवा बन जाती है। और जिराफ का उदाहरण देके आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। और एक और चीज प्रभु जी मैं कहूंगा कि आपने कहा है कि जो कार्य हम सोचते हैं कि हमें प्रसन्नता देगी वही जाके आगे कभी हमें दुख देता है, क्योंकि कृष्ण जो है वह सेंटर में नहीं है, तो कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो हमारा सारा कार्य जो है वो सफल हो जाएगा। और अंत में आपने श्रुति फल भी बता दिया कि सुनने वालों के लिए भी, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने श्रुति फल दिया और बोलने वालों के लिए भी है। और आपने एक काम ये बता दिया कि अगर कोई छोटा सा भी सेवा करता है अज्ञात सुकृतिवश तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो मुझे आज प्रतीत होता है कि मैंने भी एक छोटी सी सेवा की, केवल आपको यहाँ पर निमंत्रण देके तो भगवान जरूर मुझ पर भी प्रसन्न होंगे, इस आशा मैं रखता हूँ। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप हम सब के लिए, अवतारी देश के सभी भक्त वृंद के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हम भी जो है वो भगवान की विशुद्ध भक्ति कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु की जय।
थैंक यू वेरी मच।